खुदा उनके खादम को सुनते हैं, कि खुदा उनका खादम जो हमारे लिए रूहानी खुराक लेकर आता है, और वो खुराक जब हम खुदावंद की लेते हैं तो हम फिर उसकी नेमतों का इजहार करते हैं, ये बरकतें उसने नेमतें हमें बख्शी हैं। खुदावंद खादम नौजवान खादम है, जब मैं उन्हें देखता हूं तो मुझे भी अपना जवानी याद आती है। मैंने जब जवानी में खुदा उनको कबूल किया तो बेशक ऐसा ही था कि मेरे लिए एक मौजा ही था, लेकिन मुबारक है वो जो जवानी के अयाम में खुदा उनको कबूल करता है। बुढ़ापे में तो सभी कर लेते हैं क्योंकि आखिरी वक्त होता है, सब तो यही होता है कि बस अब खुदा खुदा करो, अब रह क्या गया। साधु सुंदर सिंह स्वामी कहते हैं कि कोई ऐसा शिगर्द नहीं जो आम तो सारा खा ले, इसका जूस पी ले, और जब हड्डी और वो छिलका रह जाए तो वो कहे उस्ताद ये तो खा ले। इसलिए जवानी के अयाम में जो खुदा उनको याद करता है, खुदा उनसे प्यार करता है। तो आज हमारे दरमियान खुदा उनके खादम जो कि इंग्लैंड से तशरीफ लाए हैं, खुदा ने उन्हें बड़ी बरकत दी है, आप लोगों ने सुना है। इससे पेशतर कि मैं आपको बताऊं, हमारे दरमियान एक फैमिली मुस्लिम फैमिली भी है, नाम मुझे उनका भूल गया है, सुहेल भाई, सुहेल जिनका ताल्लुक कराची से है, और उनकी वाइफ और उनके बच्चे खूबसूरत, चार बच्चे, दो या तीन बेटियाँ और एक बेटा भी है। जोरदार तालियां के लिए जो खुदावंद के घर में आते हैं, और अब आपकी भरपूर तालियों में ये नहीं कि जब हम खुदा के खादम को बुलाते हैं तो इस चीज़ का इजहार करते हैं कि हम खुदा को दावत दे रहे हैं कि हमारे दिलों में आ और हमारी जिंदगियों में आके बस, क्योंकि ये हैकल बनी इसीलिए है कि हम खुदा का कलाम सुने। क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए खड़े होकर खुदा उनके खादम को वेलकम करें। जोरदार तालियां। पास्टर कैस्टीन शहजादा गुलखा,
थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सारा जलाल खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले। हालेलुया। मैं अपनी और शिकायना की तरफ से आप सबको बड़ा थैंक्स कहता हूँ कि आपने हमें दावत दी कि हम आपके दरमियान में खुदा उनके कलाम के चंद अनमोल मोती जो हैं वो शेयर कर सकें। हम दोनों आईटी में काम करते हैं, वी वर्क एज फुल टाइम आईटी पीपल। हम एक ही कंपनी के लिए भी काम करते हैं, एक ही गाड़ी ड्राइव करते हैं, एक ही फ्लोर पे काम करते हैं। सो खुदा का शुक्र है इस बात के लिए, खुदा ने हमें इकट्ठा किया अपनी खिदमत के लिए और काम के लिए, और जो जॉब्स हैं उनके अलावा हम बाकी जो हमारा जितना भी टाइम है हम खुदा के साथ स्पेंड करते हैं, कभी खुदा का कलाम लेकर जाने के लिए लोगों के दरमियान, और कभी दुआ और रोज़े में। तो जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में है वो खुदावंद की देन है, खुदावंद का शुक्र इस बात के लिए। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि आसमान की बादशाही एक ऐसे बेशकीमत मोती की मानिंद है कि जब किसी को मिला तो उसने क्या किया, अपना सब कुछ बेच दिया और उसने वो मोती जो था वो ले लिया। जब हमारी ज़िंदगी में हमारी बीवी, हमारा हस्बैंड, हमारे बच्चे, हमारा घराना, हमारी गाड़ी, हमारी जॉब, हमारी सेहत, हमारा पैसा, हर कुछ, सब कुछ जब दूसरे दर्जे पर आ जाए, खुदा की बादशाही जो है, खुदा जब पहले दर्जे पर आ जाए तो हर चीज बाबरकत हो जाती है, खुदावंद ऐसा करता है। सो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक बाकी चीजें खुदा से आगे हैं तो हमें ये मौका है आज के हम, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पहले मेरी बादशाही की तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। आमीन। ये नहीं कहा कि पहले सब चीजें ले लो फिर मेरी बादशाही में आ जाना, कहा है कि मेरी बादशाही की तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएगी। मेरे मुस्लिम बहन भाई यहाँ पर बैठे हैं, यू आर पार्ट ऑफ माय फैमिली आई बिलीव एंड आई हैव ग्रेट बर्डन फॉर यू। आज हम जब दुआ करेंगे हम खास तौर पर आपके घराने के लिए दुआ करेंगे। मेरे वालिद साहब भी मुस्लिम थे, उन्होंने इस्लाम को छोड़कर मसीह को कबूल किया, उन्होंने मसीह को यीशु मसीह नासरी को नबी से तब्दील होकर खुदा मान लिया, इंसान समझना छोड़कर खुदा समझना छोड़ दिया, तो मान लिया, ये मानना छोड़ दिया कि वो मेरे गुनाहों के लिए नहीं मरा था, बल्कि ये जान लिया कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। और खुदा ने बाइबल में लिखा है कि खुदा किसी का भी तरफदार नहीं है, किसी कौम का, किसी कबीले का, किसी फिरके का, किसी जुबान का, बल्कि हर एक शख्स जो कि खुदावंद के पास आता है खुदावंद उसको अपने घर में लेकर जाता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जितनों ने यीशु को, जितनों ने खुदा को कबूल किया उसने उसे अपने बेटे और बेटियां होने का हक बख्श दिया। वही शख्स जो ये पढ़ता था कि खुदा किसी का बाप नहीं हो सकता और खुदा का कोई बेटा नहीं हो सकता, वो ये जान गया कि आज अगर मैं खुदा को अपना बाप मान लूंगा तो वो जो रिश्ता बागे अदन में टूट गया था आज वो जुड़ जाएगा और खुदा मेरा बाप हो जाएगा। और एक नौकर जो है वो अपने मालिक के पास जाता है, मांगता है तो मालिक की मर्जी है उसको दे या ना दे, लेकिन जब एक बेटा या बेटी अपने बाप के पास जाते हैं तो बाप उसको जरूर ही देता है, क्योंकि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो खुदावन के नाम को जलाल मिले इसके लिए। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, यीशु नासरी का शुक्र करता हूं जो हमारी मजबूत चट्टान है, हमारे छिपने की जगह है, हमारा मोहकम किला है, हमारा ऊंचा बुर्ज है, वो हमारे पांव हिरनियों के से बना देता है। खुदावन का शुक्र इस बात के लिए। खुदावन यीशु मसीह आज हमारे दरमियान में मौजूद है और आज हम बरकत को लेकर जाएंगे। आमीन। आज हम उससे बरकत को लेकर जाएंगे। आप हमारी खिदमत के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। किसी ने मुझसे पूछा कि आपकी मिनिस्ट्री का क्या नाम है, तो मैंने कहा जी मेरी तो मिनिस्ट्री नहीं है, मैं किसी की मिनिस्ट्री करता हूँ, मैं किसी का खादिम हूँ। वो खादिम कौन, किसका मैं खादिम है? खुदा यीशु मसीह का खादिम। और आई डोंट नो हाउ बिब्लिकल इट इज, बट लेकिन मेरी ख्वाहिश कभी भी नहीं रही कि मैं अपना नाम मिनिस्ट्री के ऊपर रखूँ, तो मैंने तहसीन खान मिनिस्ट्री इसका नाम नहीं है, इसका नाम है यीशु मसीह जो हम खिदमत करते हैं। तो क्योंकि हम यीशु मसीह की खिदमत करते हैं, आमीन। हमें कलाम के अल्फाज के ऊपर अपनी खिदमत को जोड़ना चाहिए। आज हम कुछ सीखेंगे कलाम में से, क्योंकि इन दिनों में बहुत सारी कलीसियाओं में यीशु मसीह की पहली आमद का चर्चा हो रहा है और लोग याद करते हैं कि यीशु मसीह किस तरह पैदा हुए और खुशियाँ मनाई जाती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि बाइबल में जितनी भी पेशन गोइयाँ थी यीशु मसीह की पहली आमद के बारे में वो पूरी हो गई। आमीन। एक एक लफ्ज पूरा हो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि इसमें से एक नुक्ता या शोशा भी छोड़ा नहीं जाएगा जो कि पूरा ना हो। और यीशु की पहली आमद हो गई, दुनिया तैयार थी या नहीं थी, यीशु मसीह पैदा हो गए। आमीन। यीशु मसीह इस दुनिया में आए क्योंकि वो नूर जो था वो दुनिया में आने को था और खुदा का ये वादा था कि ऐसा होगा। इसी तरह यीशु मसीह की दूसरी आमद का भी वादा है। बाइबल ये कहती है कि जब वो खड़े थे शागिर्द और यीशु मसीह को ऊपर जाते हुए देख रहे थे तो दो फरिश्ते पास खड़े थे, उन्होंने कहा कि ऐ गलीली मर्दों तुम क्या करते हो? तो उन्होंने जब देखा और उन्होंने कहा कि यही यीशु, और कोई नहीं, यही यीशु जो मर गया था जिंदा हुआ है, यही यीशु इसी तरह आसमान पर से आएगा, इसी जगह पर आएगा और सारी दुनिया के लोग उसको देखेंगे। खुदा का शुक्र। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि यीशु मसीह तो आ जाएंगे, दुनिया जो है वो यीशु मसीह को आता हुआ देखेगी भी, लेकिन कितने हैं जो खुदा की बादशाही में जाएंगे? क्योंकि यीशु मसीह की पहली आमद से दूसरी आमद के जो बीच का अरसा है वो तैयारी का अरसा है, उसमें दुनिया को तैयार होने का हुक्म दिया गया था। जैसा खुदा ने मूसा को कहा था कि अपने लोगों को जाकर कहे कि वो दो दिन तक अपने आप को तैयार करें, अपने आप को पाक करें, अपने आप को साफ करें, क्योंकि तीसरे दिन खुदावंद उनकी आंखों के सामने इस पहाड़ पर उतरेगा। और मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि यीशु मसीह तो आएंगे ही आएंगे, वो वक्त टलने का नहीं है, लेकिन क्या ही खुशनुमा ये बात हो कि जब यीशु मसीह आए तो हम छाती पीटने वालों में से ना हो, बल्कि हम खुशी और जलाल करने वाले में से। बाइबल कहती है पस हर एक अपने आप को आजमा ले, हम देख लें अपने आप को, परख लें, जांच लें। जिस तरह एक दुल्हन जो है वो दूल्हा के सामने आने से पहले एक दफा अपने आप को शीशे में देखती है कि कहीं कोई दाग तो नहीं मेरे कपड़ों पे लगा हुआ, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं अगर जाऊंगी लोगों के सामने तो मैं एम्बेरस तो नहीं हो जाऊंगी। हम अपने आप को देखते हैं किसी भी फंक्शन में जाने से पहले। तो यही तरीका है कि हमें खुदावंद के सामने हाजिर होना है। लेकिन यीशु मसीह की आमद से पहले कुछ चीजें जो है बाइबल में बताई गई है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ये सारा सीक्वेंस आपके सामने रखना चाहता हूं। हो सकता है आपने ये चीजें पहले सुनी हो, लेकिन हो सकता है ना सुनी हो। मैं बताना चाहता हूं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने को है। सबसे पहले एक चीज मैं आपको दिखा दूं, काशवा की किताब में जाएंगे, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 और उसकी वर्स 7, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 7, काशवा की किताब 12वां बाब और उसकी 7वीं आयत, प्रकाश की पोथी 12वां अध्याय और 7वीं आयत लिखा है कि फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके फरिश्ते अश्तहा यानी शैतान से लड़ने को निकले, और शैतान और उसके फरिश्ते उनसे लड़े लेकिन गालिब ना आए, और उसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही, और वो बड़ा अश्तहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी कि अब हमारे खुदा की निजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला जो दिन रात हमारे खुदा के आगे उन पर इल्जाम लगाया करता है गिरा दिया गया, और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए हैं, और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा यहां तक कि मौत को भी गवारा किया। बस ऐ आसमानों और उनके रहने वालों खुशी मनाओ, ऐ खुशकी और तरी तुम पर अफसोस, क्योंकि इब्लीस बड़े गुस्सा में तुम्हारे पास उतर कर आया है, इसलिए जानता है कि मेरा थोड़ा सा ही वक्त बाकी है। ये जो सिलसिला है ये आजकल जारी है, आसमान में एक बहुत बड़ी जंग हो रही है मेरे जिंदगी, हम इसको माने या ना माने, हम इसको जाने या ना जाने, ये आखिरी जमाने की जंग जो है इस वक्त शुरू हो चुकी है। आमीन। इब्लीस को पता है कि उसके पास बहुत कम वक्त है, इब्लीस को पता है कि उसके पास बहुत कम वक्त है, और दुनिया में अगर इब्लीस किसी से सबसे ज्यादा नफरत करता है वो खुदा की जात है, और खुदा से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, खुदा की सारी क्रिएशन से वो नफरत करता है, उसमें मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल है। आज अगर यहां पर आप बैठे हैं तो इसके लिए इब्लीस को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, वो चाहता है कि हमको गिरा दे, और आसमान में जंग हो रही है, लेकिन उसका नतीजा जमीन पर क्या हो रहा था कि लिखा है कि लोगों ने अपनी जाने खुदावंत की कुर्बानी के लिए अपनी जाने कुर्बान कर दी, बर्रा की गवाही के लिए, खुदा के नाम का जलाल नीचे जमीन पर हो रहा है, जमीन पर नीचे गवाही दी जा रही है और आसमान पर जंग हो रही है। आज अगर हम यहां पर बैठकर दुआएं कर रहे थे, आज अगर हम यहां पर बैठकर गीत गा रहे थे, तो आसमान में बहुत बड़ी जंग हो रही थी, इब्लीस के फरिश्तों के खिलाफ जंग हो रही थी, बीमारियों के खिलाफ जंग हो रही थी, तकलीफों के खिलाफ जंग हो रही थी, हर वो अजियत के खिलाफ जंग हो रही थी जो इब्लीस हमारे खिलाफ लाना चाहता है। लेकिन इट्स अ सीरियस मैटर, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि इब्लीस को फेंक दिया गया, वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है जब इब्लीस को फेंक दिया जाएगा जमीन पर, मिकाएल फरिश्ता उसको सेकंड हेवन से किक आउट कर देगा। उसके बाद क्या होगा कि वो इब्लीस जो है एक शख्स में समा जाएगा, उस शख्स का नाम है मुखालिफ मसीह, एंटी क्राइस्ट, एक ऐसा शख्स दुनिया में आने वाला है जो बहुत जल्द जाहिर होगा, जो कि मुखालिफ मसीह कहलाता है, जिसके अंदर शैतान समा गया, जिस तरह यहूदा इस्करियोती के अंदर शैतान समा गया था और उसने खुदावंद यीशु मसीह को बेच दिया था, इसी तरह एक मुखालिफ मसीह आएगा जिसके अंदर शैतान समा जाएगा और वो खुदा की कौम, खुदा की कलीसिया, खुदा के लोगों के खिलाफ काम शुरू करेगा। ये वो वक्त होगा जब इस कलाम मुकद्दस की मोहरें खोली जाएंगी। मेरे साथ देखें मुकाशफा की किताब उसका 5वां बाब, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 5 और उसकी 1वीं आयत लिखा है कि जो तख्त पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी, जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी और उसे सात मोहरे लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक और जोरदार फरिश्ता को बुलंद आवाज से यह मुनादी करते हुए देखा कि कौन इस किताब को खोलने और इसकी मोहरे तोड़ने के लायक है। कोई शख्स आसमान या जमीन पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। और मैं इस बात पर जार जार रोने लगा कि कोई इस किताब को खोलने या इस पर नजर करने के लायक ही नहीं निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीला का बब्बर जो दाऊद की असल है यानी यीशु अल मसीह इस किताब और इसकी सातों मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि दुनिया की ये कौन सी किताब है जो दोनों तरफ से लिखी हुई है, अंदर से भी बाहर से। बाइबल में जिक्र है इस किताब का, देयर इज वन बुक इन द होल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जो कि दोनों तरफ से लिखी गई थी। उसको सीधा भी पढ़ते थे वैसी थी, उल्टा भी पढ़ते थे वैसी थी। तो बता सकता है मेरे साथ, देखें एक्सोडस, खुरूज की किताब, एक्सोडस चैप्टर है 32। और उसकी 15th वर्स, खुरूज की किताब उसका 32वां बाब और उसकी 15 और 16 आए। निकाल लिए, लिखा है कि मूसा शहादत की दोनों लौहे लेकर यानी कि जो तख्तियां थी, तोरेत की जो किताब थी, शरीयत की जो किताब थी, उसको लिए हुए उल्टा फिरा और पहाड़ से नीचे उतरा और वो लोहे क्या था, इधर से और उधर से दोनों तरफ से लिखी हुई थी। आमीन। ये जो किताब है ये शरीयत की किताब है जिसके बारे में कहा गया कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। और लिखा है कि जब फरिश्तों ने उस किताब को प्रेजेंट किया तो दुनिया में कोई भी शख्स उसको खोलने के लायक ना निकला, क्योंकि दुनिया में से कोई भी शख्स, चाहे वो किसी भी मजहब का नबी हो, चाहे वो किसी भी मजहब का बाबा हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे बहुत बड़ा उस्ताद हो, चाहे बहुत बड़ा नेक आदमी हो, दुनिया में कोई भी शख्स उस शरीयत की रासबाजी को पूरा नहीं कर सकता। दुनिया में हम सब, क्योंकि लिखा है कि हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए, लेकिन दुनिया में एक ऐसा आया, यहूदा के कबीला का बब्बर, दाऊद की असल, जिसने उस किताब को खोला और उसकी मोहरों को खोलने के लायक ठहरा है, क्योंकि यीशु मसीह ने शरीयत के तमाम हुक्मों पर अमल करके फतह हासिल की है, मौत पर फतह हासिल की है, गुनाह पर फतह हासिल की है, कब्र पर फतह हासिल की है। आमीन। तो लिखा है कि वो किताब यीशु को दी गई, वो किताब दी गई और यूहन्ना रोने लग गया कि दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं निकला जो इस किताब को खोल सके, इसको अप्लाई कर सके, इसको पूरा कर सके। लेकिन एक बुजुर्ग उठा 24 बुजुर्गों में से और उसने कहा कि नहीं, एक है जो यहूदा के कबीला का बब्बर है जिसने ये शरीयत को पूरा की है। ये जो सील्स हैं ये दो दफा तोड़ी गई है, क्योंकि इस सिस्ना की किताब में लिखा है उसके 30th चैप्टर में बुक ऑफ डिट्रोनॉमी कि आज मैं तेरे सामने लानत और बरकत, मौत और जिंदगी दोनों को रख रहा हूं। ठीक है, क्योंकि खुदा के कलाम को क्या कहा गया, ये दो धारी तलवार है, एक इसकी जो साइड है वो बरकत लेकर आती है, दूसरी इसकी साइड जो है वो लानत भी लेकर आती है। बरकत कैसे लाती है कि जब तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो तुम बरकत पाओगे, और लिखा है कि जब तुम इसके खिलाफ जाओगे तो तुम लानत के नीचे आओगे। ठीक है, तो पहली आमद में यीशु ने जब इस शरीयत की किताब की मोहरों को तोड़ा तो क्या जारी हुआ, बरकत जारी हुई, पूरी दुनिया ने निजात पाई, निजात का दरवाजा खोल दिया गया, क्योंकि बरकत जो है पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो जारी हो गई, पूरी दुनिया के लिए जो है जिंदगी और जिंदगी की खुदा की बादशाही की बरकत मिल गई। लेकिन आखिरी जमाना में क्या हुआ कि जब इन मोहरों को खोला जाएगा तो दुनिया पर लानत आएगी। क्यों लानत आएगी, क्योंकि लिखा है कि उन्होंने उसको ना जाना। आमीन। दुनिया पर एक बहुत बड़ी लानत आने वाली है, उस लानत का नाम जो है वो मुखालफ मसीह है। वापस जाएंगे मुकाशफा की किताब में 5वें बाब में। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे, जब उन मोरों को तोड़ा जाएगा, जब आसमान पर जंग हो रही होगी जो कि बहुत जल्द होने को है, 6वें बाब में जाएंगे रेवलेशन चैप्टर 6 में। तो लिखा है कि बर्रा ने उन सात मोरों में से एक को खोला और उन चारों जानदारों में से एक की गर्ज की सी ये आवाज आती सुनी कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है, उसका सवार कमान लिए हुए है और उसे एक ताज दिया गया है, और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी पता करे, दिस इज द इम्पोस्टर, ये जो है ये खुदावंद यीशु मसीह की कॉपी करने वाला मुखालफ मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा था कि दुनिया का आखिर का निशान ये होगा कि कौमों पर कौमें चढ़ाई करेंगे, जलजले आएंगे, तूफान आएंगे और झूठे नबी और झूठे मसीह खड़े हो जाएंगे। झूठा मसीह कौन है? जो मुखालफ मसीह है, जो यीशु की तालीम के अपोजिट बयान देता है, जो यीशु मसीह की तालीम के अपोजिट सिखाता है, जो बाइबल की तालीम के अपोजिट है और वो झूठ बोलता है। और लिखा है कि मुखालफ मसीह आया, यीशु भी सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे, लेकिन यहां पर जो मुखालफ मसीह आ रहा है वो भी सफेद घोड़े पर आकर आ रहा है और वो कह रहा है कि मैं अमन का सफीर हूं, क्योंकि वो कुमान लेकर आ रहा है और सफेद रंग जो है अमन का निशान है। जब मुखालफ मसीह आएगा तो क्या करेगा? 7 साल के लिए दुनिया की सारी कौमों के साथ मुआहदा करेगा और इसराइल के साथ खास तौर पर, और जो पहाड़ है इसराइल के अंदर जिसको यरूशलेम का पहाड़ या कोहे मोरिया कहा जाता है, जहां पर 2 मस्जिदें बनी हुई हैं जिनमें से एक का नाम मस्जिद अक्सा है और दूसरी का नाम जो है अलसखरा है, जो कि गोल्डन रॉक है जिसको डोम ऑफ द रॉक भी कहते हैं, उन दोनों मस्जिदों के साथ यहूदियों को इजाजत दी जाएगी कि वहां पर कुर्बानी चढ़ाएं। ये जो मुखालफ मसीह होगा ये इस्लाम मजहब से होगा, जो कि इमाम मेहदी या खलीफा कहलाएगा उस मजहब का। और ये जो खलीफा और खिलाफत का जो सिलसिला है ये इराक में ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अब मोस्ट प्रोबेबली यही शख्स जो उनका खलीफा आईएसएस का या आईएस का बन गया, ये हो गया या इसका हो सकता है सक्सेसर हो इस चीज में, लेकिन ये है कि ये बहुत जल्द होने वाला है, आप देखेंगे। एक और चीज इसका निशान होगा, अगर यरमिया चैप्टर 49 में जाएं और आयजाया चैप्टर 17 में जाएं तो वहां पर प्रोफेसी है कि डिमास्कस जो है, सिटी ऑफ डिमास्कस जो है, या दमिश्क का शहर जो है, वो मलियामेट हो जाएगा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और आपको बताते चले कि हिस्ट्री में जब से लेकर आज तक हिस्ट्री है, दमिश्क जो है वो सबसे पुराना शहर है, और आज तक यरूशलेम जैसे बहुत दफा तबाह हुआ और भी शहर काफी दफा तबाह हुए, लेकिन दमिश्क हमेशा कायम रहा है। तो ये प्रोफेसी अभी तक पूरी नहीं हुई, मेरे साथ देख ले चाहे अगर इसको देखना है, आयजाया चैप्टर 17 में जाएंगे, और इस वक्त जो है वो दमिश्क के ऊपर ही जो है वो अटैक हो रहा है। आज बल्कि कल रात को मैं पढ़ रहा था कि इसराइल ने सीरिया के ऊपर, डमास्कस के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की हैं। तो ये जो है वो एक एटॉमिक वॉरफेयर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और ये जो बहुत वहां पर अभी जंग शुरू होगी और ज्यादा बढ़ जाएगी, यू विल सी के डमास्कस विल बी कह लेंगे उसको, इट विल बी रिड्यूस्ड टू रबल, ठीक है, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लिखा है कि 7वें बाब की पहली आयत में आयजाया, दमिश्क की बाबत बारे नबूत, देखो दमिश्क अब तो शहर ना रहेगा बल्कि खंडर का ढेर होगा, अरो एर की बस्तियां वीरान हैं और गल्लों की चरागाहें होंगी, वो वहां बैठेंगे और कोई उनके डराने को भी वहां ना होगा, इफ्राइम में कोई किला ना रहेगा और दमिश्क और इराम के बकिया से सल्तनत जाती रहेगी। खुदावन रब्बुल अफवाज फरमाता है कि जो हाल बनी इसराइल की शौकत का हुआ वो ही उनका होगा। और अगर आयजाया 49 में आप घर जाकर पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। तो क्या होगा कि नेक्स्ट चीज आप देखेंगे आइंदा आने वाले चंद दिनों में, इस आने वाले साल में आप देखेंगे कि दमिश्क पर बहुत बड़ा अटैक होगा, बाइबल जी बता रही है। और ये जो चीज है ये ट्रिगर करेगी मुखालफ मसीह के आने को, ये चीज जो है वो ट्रिगर करेगी पीस ट्रीटी को, क्योंकि इसमें इसराइल इन्वॉल्व होगा। और पीस ट्रीटी कब की जाती है, अमन का मुआहदा कब किया जाता है, जब क्या हो रहा होता है, दुनिया में जंग हो रही होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो जंग इस वक्त हो रही है इसमें इसराइल इन्वॉल्व हो जाएगा, आईसिस का जो सिलसिला है, जो खिलाफत का सिलसिला है इराक में और सीरिया में, इसमें आप देखेंगे कि इजिप्ट और लिबिया और ट्यूनिजिया वगैरह और सूडान और ये कंट्री सारे शामिल होंगे, पाकिस्तान, ईरान और सऊदीया वगैरह इसमें शामिल हो जाएंगे, ये सारे जो कंट्रीज हैं। टर्की इनको लीड करेगा, इसकी डिटेल में मैं अभी इतना नहीं जा सकता क्योंकि अदरवाइज हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, दूसरी मोहर खोलते हैं मेरे साथ, देखें वापस जाएंगे मुकाशवा 5वें बाब में, कि जब ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, दुनिया में जंग हो जाएगी शुरू, इसराइल पर वो अटैक करना शुरू करेंगे, तो अमन मुआहदा किया जाएगा, यरूशलेम जो है वो, यरूशलेम का शहर जो है वो मुसीबत का जो है वो गढ़ बन जाएगा, वहां पर मुस्लिम्स और ज्यूस की जो है बहुत बड़ी वॉरफेयर होगी। उसके बाद क्या होगा कि जो इमाम मेहदी होगा या इनका जो खलीफा होगा वो अमन का मुआहदा करेगा, सफेद घोड़े पर आया है अमन का मुआहदा करने के लिए, 7 साल के लिए मुआहदा करेगा। लेकिन तीसरी आयत में लिखा है रेवलेशन चैप्टर 6:3 में कि जब दूसरी मोहर खोली तो दूसरे जानदार को यह कहते सुना कि आ, और फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था, उसके सवार को यह इख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुलह उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और उसे एक बहुत बड़ी तलवार दी गई। क्या हुआ है कि अमन का मुआहदा किया गया लेकिन 3.5 साल के बाद वो मुआहदा टूट जाएगा और दुनिया पर जंग शुरू करवा देगा। क्योंकि अमन का शहजादा सिर्फ एक है, वो यीशु मसीह नासरी की जात है। क्योंकि लिखा है कि सलामती का शहजादा, खुदा कादर, अब्दियत का बाप, अजीब मशीर हमारे दरमियान में है। लेकिन जो वो दावा ये किया जाएगा कि ये मजहब जो है, या ये जो हम आपके साथ बात कर रहे हैं, ये अमन की बात है, लेकिन उसके पीछे जंग होगी। और क्या है कि जंग जब शुरू होगी 3.5 साल के बाद, दुनिया पर से सुलह उठा ली जाएगी और कत्लोगारत शुरू होगी, तलवारों के साथ, हथियारों के साथ। और फिर तीसरी मोहर खोली जाएगी, और लिखे है 5वें आयत में कि तीसरे एक और घोड़े को निकलते हुए देखा, जो कि काला घोड़ा है, और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में से यह आवाज आती सुनी कि गेहूं दिनार के शेर भर और जौ दिनार के 3 शेर और तेल और मैं का नुकसान ना कर। क्या होगा कि जब ये जंग का समय शुरू होगा और जहां जहां खिलाफत का कंट्रोल होगा, जहां जहां जो है मुखालफ मसीह की हुकूमत होगी, वहां पर हम खरीदो फरोख पर पाबंदी लगा दी जाएगी और कहा जाएगा कि अगर तुम ये कलमा पढ़ो, अगर तुम ये निशान लो, अगर तुम ये छाप लो अपने हाथों पर और अपने माथों पर, तो तुम खरीदो फरोख्त कर सकते हो, अदरवाइज तुम खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते। हमारे बच्चे जो है अगर वहां पर भूखे हैं तो वो भूखे मरेंगे, लेकिन उस वक्त क्या होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो अपनी जिंदगियां उस मुखालफ मसीह के हाथ में बेच देंगे, वो अपने मजहब का, यीशु मसीह के नाम का इनकार कर देंगे, छाप ले लेंगे बहुत सारे लोग। लेकिन बहुत सारे लोग लिखा है कि वो इनकार नहीं करेंगे, जिनकी रूहें, लिखा है कि वहां पर उनकी रूहें देखी, जिनके सर मेरी गवाही देने के सबब से काटे गए थे। ये जो बिहेडिंग्स आप आजकल देखते हैं कि एक या दो बंदों की हो रही है, ये मैस लेवल पे हो जाएंगी, क्योंकि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन, दुनिया के 2 बिलियन लोग जो है वो मर जाएंगे, जिनमें से बहुत सारे बिहेडिंग्स होंगे। क्योंकि चौथी मोहर खुलेगी, 7वें आयत में लिखा है कि जब चौथी मोहर खुली तो मैंने चौथे जानदार को यह कहते सुना कि आ, ये सारा सिलसिला क्या हो रहा है कि यीशु मसीह मोहरें खोल रहे हैं शरीयत की, और वो जो लानते शरीयत में लिखी हुई थी नाफरमानी के सबब, वो दुनिया पर आ रही है, ठीक है, मुखालफ मसीह की शक्ल में। और बाकी क्योंकि दुनिया जो है उसने यीशु को नहीं जाना, दुनिया सफर करेगी। और फिर लिखा है कि एक सवार आया जिसका नाम मौत है और आलम रवाज के पीछे है, और चौथाई जमीन पर उसको ये इख्तियार दिए गए, 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन। और अभी पॉपुलेशन दुनिया की कितनी है? अबाउट 7 बिलियन। तो 1/4 कितनी बनती है? 1.5 समथिंग, ठीक है, 1.5 बिलियन के करीब लोग जो है दुनिया में मरेंगे। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि ये मुसीबत आएगी जो इतनी बड़ी है कि आज तक हिस्ट्री में पहले कभी नहीं आई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने जो बंदे मारे थे 54 मिलियन लोग मरे थे, लेकिन यहां पर 1.7 बिलियन लोग मरेंगे, ठीक है। क्या हम रेडी हैं इन चीजों के लिए? ये चीजें हम हमारे आंखों के सामने बहुत जल्दी होने वाली है। फिर लिखा है कि 5वीं मोहर खोली गई तो कुर्बान गाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे, और वो बड़ी आवाज से चिल्लाकर बोली कि ऐ मालिक, ऐ कुदूस बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा? जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला क्यों करना लेगा? और उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया। आमीन। और कहा गया कि और थोड़ी मुदत आराम करो जब तक तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों की का भी शुमार पूरा ना हो ले जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं, जिनको आग की भट्टी में जिंदा जला दिया जाएगा, जिनके सर काट दिए जाएंगे, जिनके बाजू तोड़कर उनको आग के भट्टों में आज का जैसे फेंका है, जब इबादत खानों में बम चला दिए जाएंगे। ये जो है अभी तो मुसीबतों का शुरू है, लेकिन हमारे पास एक उम्मीद है। उम्मीद क्या है कि जिन्होंने अपनी जिंदगी खुदावंद के नाम के लिए कुर्बान की, लिखा है जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा, हर एक को सफेद जमा दिया गया और खुदा के तख्त के सामने वो खड़े हो गए। हालेलुया। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, 3.5 साल की मुसीबत थी और एलिया नबी ने 3.5 साल तक क्या किया था? हेवन को बंद कर दिया था, लेकिन वो जो सारपत की बेवा थी उसके पास खाना फिनिश हुआ नहीं हुआ था। आमीन। और खुदावन के लोग जो थे बरकत पाए वहां पर, मिस्र में जब मुसीबतें आई थी तो क्या बनी इसराइल जहां पर ठहरे थे वहां पर आती थी मुसीबतें? नहीं, क्योंकि खुदावंद अपने ईमानदार लोगों की हिफाजत करता है। मुकाशफा की किताब उसके 3rd बाब में रेवलेशन चैप्टर 3 और उसकी वर्स 8 में पढ़ते हैं, लिखा है कि जिसको मैंने खोला है उसको कोई बंद नहीं कर सकता, तुझमें थोड़ा सा जोर है, तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। और 10वीं आयत में लिखा है कि चूंकि तूने मेरे सबर के कलाम पर अमल किया है इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त में तेरी हिफाजत करूंगा, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों की हिफाजत करेगा। जो लोग खुदावंद के नाम से कहलाए जाते हैं, जिन पर उस बर्रा के नाम की मोहर हो चुकी है, जो यीशु मसीह को मानेंगे उनकी हिफाजत की जाएगी। और जो आखिरी 3.5 साल होंगे उनमें दो लोग खुदा खड़े करेगा जो कि दो गवाह हैं। किस किस को पता है दो गवाहों के बारे में? दो गवाह आएंगे, ठीक है, टू विटनेसेस आएंगे। मुकाशफा की किताब 11वें बाब में जाएंगे, रेवलेशन चैप्टर 11 और उसकी 3rd verse, बल्कि 11:1 से मैं पढ़ता, लिखा है कि मुझे असा की मानक मान नापने की लकड़ी दी गई और किसी से कहा कि उठ खुदा के मकदिस और कुर्बान का और उसमें इबादत करने वालों को नाप और उस सेन को जो मकदिस के बाहर है खारिज कर दे और उसे ना नाप क्योंकि गैर कौमों को दे दिया गया है। वो मकदिस को मुकद्दस शहर यानी यरूशलेम को 42 महीने तक पामाल करेंगे, यानी 3.5 साल तक। क्या होगा कि जब अमन का मुआहदा टूटेगा तो वहां पर जो खुदा के नाम का जो स्ट्रक्चर बनाया गया था, यहूदी लोग कुर्बानियां करते थे, वो उनको पैरों के नीचे रौंदेंगे, वो सारे स्ट्रक्चर को तोड़ देंगे, वहां पर गैर कौमें आकर काबिज हो जाएंगी और यहूदियों के हाथ से वो शहर जो है वो चला जाएगा, आधा यरूशलेम जो है। और वहां पर फिर दो गवाह आएंगे जो यरूशलेम में आकर मुनादी करेंगे। 3री आयत में लिखा है कि मैं इन गवाहों को इख्तियार दूंगा और वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक नबूवत करेंगे, जो कि 3.5 साल बनते हैं। 5वीं आयत में लिखा है कि अगर कोई इन्हें जरूरत पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके दुश्मनों को खा जाती है, जैसे एलिया ने आग बरसाई थी। और लिखा है कि अगर कोई इन्हें जरूरत पहुंचाना चाहता है तो वो जरूर इसी तरह मारा जाएगा। उनको इख्तियार है कि वो आसमान को बंद कर दें ताकि उनकी नबूवत के जमाना में पानी ना बरसे, क्योंकि वहां पर एक गवाह जो है वो एलिया खड़ा था, जिसने पहले भी 3.5 साल तक उस अपनी नबूवत के जमाना में पानी को बरसने नहीं दिया था। और दूसरे को इख्तियार है कि वो पानी को खून बना डाले, जितनी दफा चाहे जमीन पर हर तरह की आफत लाए। ये मूसा है जो वहां पर खड़ा होगा और वहां पर क्या है कि पानी को खून बनाएगा और उन 10 आफतों को जो कि मुल्के मिस्र और फिरौन पर आई, उन्हीं आफतों को मुखालफ मसीह और उसकी फौजों पर लेकर आएगा। क्योंकि यीशु मसीह की पहली आमद पर भी मूसा और एलिया खड़े थे और यीशु मसीह के मरने और जी उठने का जिक्र करते थे। और यही बात जो है खुदावंद का बंदा कहता है, यूहन्ना के मूसा और एलिया फिर आएंगे और यरूशलेम के अंदर वो आकर मुनादी करेंगे और मुखालफ मसीह 3.5 साल तक उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसका मतलब है कि जितने भी लोग खुदावंद यीशु मसीह के नाम की वहां पर मुनादी कर रहे थे दुनिया में, मुखालफ मसीह उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा, क्योंकि खुदावन के लोग जो है खुदावन की हिफाजत में हैं। और एक और चीज जो हमारे सामने दिखाई गई है, बाइबल बताती है, 15वें बाब में जाएंगे जो हमारी सबसे बड़ी होप है, मुकाशवा की किताब 15वां बाब। जब ये सब कुछ हो रहा होगा तो लिखा है कि 15 वर्स 1 में लिखा है, फिर मैंने आसमान पर से एक और बड़ा और अजीब निशान यानी 7 फरिश्ते 7 पिछली आफतों को लिए हुए देखे, क्योंकि उन आफतों पर खुदा का कहर खत्म हो गया। फिर मैंने शीशा का एक बड़ा समुंदर देखा जिसमें आग मिली हुई थी और जो हैवान और उसके बुत और उसके नाम के अदद पर गालिब आए थे, यानी कि वो तमाम लोग जिन्होंने खुदा यीशु मसीह के नाम का इनकार नहीं किया, जिन्होंने खुदा यीशु मसीह की निजात को माना, जिन्होंने उसकी सलीब को अपनी जिंदगी में ले लिया। लिखा है कि उनको उस शीशा के समुंदर के पास खुदा की बरकतें लिए खड़े हुए देखा। वो खुदा के बंदा मूसा का गीत और बर्रा का गीत गा गा कर कहते थे, खुदावंद खुदा कादर मुतलिक तेरे काम बड़े और अजीब है, ऐसी बादशाह तेरी राहें रास्त और दुरुस्त है, अरे खुदावंद कौन तुझसे न डरेगा और कौन तेरे नाम की तमजीद ना करेगा, क्योंकि सिर्फ तू ही कुदूस है और सब कौमें आकर तेरे सामने सजदा करेगी। मेरे अजीजों, ये मैं और आप लोग हैं जब हम खुदावंद की बादशाही में शामिल हो जाएंगे। और बाइबल में लिखा है कि वो मुकर्रर फरिश्ते की आवाज और नरसिंगे के साथ और अपने फरिश्तों के साथ जब आसमान पर से आएगा तो हमारे जो मुर्दे मर चुके हैं, हमारे लोग जो सो चुके हैं, वो जिंदे हो जाएंगे और हम जो खड़े होंगे वो बदल जाएंगे और हमें जलाली बदन दिया जाएगा। और तब लिखा है कि ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा, फानी जो है वो खाकी जो है वो जलाली का और अजली का जामा पहन लेगा और हमें जलाली बदन इस खाकी बदन को पीछे कर दिया जाएगा और हमें एक ऐसा बदन दिया जाएगा जो कि आदम और हवा के पास था। जो कि बाग अदन में था और जलाली बदन था, जिसके वसीला से खुदावंद यीशु मसीह के नाम का जलाल होगा, जिसको लेकर हम खुदा को अपने रूबरू देख सकेंगे, क्योंकि इस बदन में हम खुदा को नहीं देख सकते। तब हम खुदावंद के सामने पेश किए जाएंगे और खुदा के तख्त के सामने, उस शीशा के समुंदर के सामने हम पेश किए जाएंगे और आसमान खोला जाएगा और शहादत का खेमा जो आसमान में है, आसमान की हैकल जो है वो खोली जाएगी और हमें खुदा के सामने पहले फलों के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह पेश करेंगे। तब हम खुदावंद के हाथ में आ जाएंगे, खुदावंद के पास चले जाएंगे, जिसको रैप्चर भी कहा गया है, जिसको हवा में उड़ना भी कहा गया है मेरे अज़ीज़ों। लेकिन ये उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने लिखा है कि उसको कबूल किया, जिन्होंने तौबा की, जिन्होंने बपतिस्मा लिया। हमारे बहुत सारे मसीही दोस्त जो है, बहन भाई जो है, वो ये समझते हैं कि हम चूंकि मसीह घराने में पैदा हुए हैं इसलिए हम मसीही हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड हु इज अ बॉर्न क्रिश्चियन। जब हम ये कहते हैं ना कि हम पैदाइशी मसीही हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम अपने बाप को कह रहे हैं कि तेरे खून की वजह से मैं मसीही हूँ। अगर मैं विल्सन साहब का बेटा हूँ और मैं कहूँ मैं पैदाइशी मसीही हूँ, तो इसका मतलब होगा कि मैं विल्सन साहब की वजह से मसीही हूँ। मुझे विल्सन साहब का खून नहीं बचाएगा, बल्कि खुदा यीशु मसीह का खून बचाएगा। आमीन। खुदा के कोई ग्रैंड डॉटर्स या ग्रैंड सन्स नहीं है। हम सब ने गुनाह किया, हम में से कोई भी पैदाइशी मसीह नहीं है। ये जो सोचे हैं ये गैर मजहब की हैं, जैसे मुस्लिम लोग समझते हैं कि वो पैदाइशी मुसलमान है, जैसे सिख लोग समझते हैं वो पैदाइशी सिख है, जैसे हिंदू समझते हैं पैदाइशी वो हिंदू है। हालांकि बाइबल ये बताती है कि हर शख्स पैदाइशी गुनाहगार है और हर शख्स को यीशु मसीह की जरूरत है, इसलिए हमें तौबा करने की जरूरत है और बपतिस्मा लेने की जरूरत है। हम तब तक खुदा की बादशाह में नहीं जा सकेंगे जब तक हम नए सिरे से पैदा नहीं होंगे। बाइबल ये बताती है, यीशु मसीह के पास जब निकोदिमस आया, उसने कहा कि मैं अपनी माँ के पेट में कैसे दोबारा जा सकता हूँ। यीशु ने कहा कि जब तक तू पानी और रूह से पैदा नहीं होगा, तू खुदा की बादशाही को नहीं देख सकेगा। जिस तरह हम अपनी माँ के पेट में थे, पानी में थे, जब हम बपतिस्मा के लिए उस तालाब में जाते हैं या पानी की किसी भी चीज में जाते हैं, तो हम अपनी जैसे माँ के पेट में वापस चले गए, और जब हम बाहर आते हैं तो हम नए सिरे से पैदा हो गए। ठीक है, क्योंकि ये वो कब्र का निशान है, जैसे रोमियो के खत उसके छठे बाब में लिखा है कि पौलुस ने कहा कि जब तुम पानी में बपतिस्मा लेते हो, मसीह के मरने और जी उठने में शामिल होते हो। हम में से वो ही लोग खुदा की बादशाही में शामिल होंगे जिन्होंने तौबा की है और बपतिस्मा लिया है, नए सिरे से पैदा हुए हैं। आप में से अगर कोई नहीं पैदा हुआ नए सिरे से, तो आज आपके पास मौका है कि आप अपनी जिंदगी खुदावंत को दे दें। पास्टर साहिबान से कहें कि हमें तौबा कराएं, बपतिस्मा लें, हम नए सिरे से पैदा होना चाहते हैं। क्योंकि हमारे पास जो रिवॉर्ड होगा वो क्या होगा, मुकाशवा की किताब 20वें बाब में जाएंगे, उसके बाद क्या होगा कि जब हम आसमान पर उठा लिए जाएंगे तो जमीन पर 7 आफतों के प्याले उंडेले जाएंगे। जब 7 आफतों के प्याले उंडेले जाएंगे तो मुखालफ मसीह और उसकी फौजें और उसके जो लोग हैं वो सफर करेंगे। दुनिया के लोग जो हैं वो मुसीबत का शिकार होंगे, लेकिन वो तौबा नहीं करेंगे, क्योंकि अब मौका उनके हाथ से जाता रहा। बाइबल में कहीं पर लिखा कि फिर लोग दोबारा तौबा करेंगे। जो लोग वहां पर उठा लिए गए वो उठा लिए गए, जितने नीचे रह गए वो मुसीबतों का शिकार होंगे। और फिर खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर से आएंगे और वो इस इमाम मेहदी और खलीफा और ये तमाम लोग जो हैं वो उनके खिलाफ जंग करेंगे। जब हम मुस्लिम से हमें ये सिखाया गया था कि यीशु मसीह आएंगे और वो इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे, फिर वो मुसलमान हो जाएंगे और फिर वो क्या करेंगे, मुसलमान लड़की से शादी करेंगे, उनके बच्चे पैदा होंगे, 40 साल के बाद उनकी डेथ होगी और उनको मोहम्मद के साथ जो है वो कब्र में डाला जाएगा उनके नेक्स्ट, और फिर क्या होगा कि स्लीपों को तोड़ दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, दिस इज व्हाट सैटन वांट्स अस टू बिलीव। वो चाहता है कि हम ये मानकर चले, लेकिन बाइबल ये बताती है कि जब खुदा यीशु मसीह आएंगे तो आकर वो उस खलीफा के खिलाफ खड़े होंगे, वो सच्चे खुदा की तमजीद करेंगे, क्योंकि खुदा और इंसान का जो रिश्ता है वो कायम किया जाएगा। खलीफा आकर यही कहेगा कि खुदा तुम्हारा बाप नहीं हो सकता, तुम उसके बेटे और बेटियां नहीं हो सकते, यीशु तुम्हारे लिए नहीं मरा, वो वैसे ही ऊपर चला गया था, लेकिन खुदा ये कहता है कि तुम्हारे लिए, बाइबल ये कहती है कि उसने सारी दुनिया के लिए अपनी जान दी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। और फिर क्या होगा कि आखिरी जंग में जब खुदा में यीशु मसीह वापस आएंगे और जमीन पर बहुत बड़ी जंग होगी, और बाइबल ये बताती है कि 200 मिलियन की आर्मी होगी मुखालफ मसीह की, 20 करोड़ की उसकी आर्मी होगी, इसराइल पर अटैक किया होगा, जमीन पर जंग हो रही होगी जिसको हर मजदून की जंग कहते हैं, और क्या होगा कि वहां पर यीशु मसीह आएंगे और अपने मुंह की तलवार से उस तमाम फौज को वो जज करेंगे और उनको आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। मेरे साथ देखें चैप्टर 19, रेवलेशन चैप्टर 19 उसकी वर्स 19 लिखा है कि फिर मैंने उस सेवान और जमीन के बादशाहों और उनकी फौजों को, उस घोड़े के सवार और उसकी फौजों यानी कि जो खलीफा था, जंग करने के लिए इकट्ठे देखा, और वो हैवान और उसके साथ वो झूठा नबी पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे निशान दिखाए थे जिनमें से उसने हैवान की छाप लेने वालों यानी कि जिन्होंने मुखालफ मसीह की मोर ली थी, उसके मजहब को फॉलो किया था और उसके बुत की प्रस्तुति करने वालों को गुमराह किया था, वो दोनों आग की उस झील में जिंदा डाल दिए गए जो गंधक से जलती है, और बाकी उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी कत्ल किए गए, और सब परिंदे उनके गोश से शेर हो गए। आज अगर हमारे सामने ये मौका दिया जाए, और ऐसा बहुत सारे लोगों के सामने होगा, उनको ये मौका दिया जाएगा कि मुखालफ मसीह की छाप ले लें, मेरे तो ये अंजाम होगा, अगर आप छाप ले लेंगे तो आपको भी उस आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा, अगर आप डर जाएंगे तो आप उस हमेशा की अवधि मौत में चले जाएंगे। लेकिन चौथी आयत में, 20वें बाब की 4 आयत में लिखा है कि फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, जिनको लोग टीवी पर देखते थे और कहते थे कि ये लोग बेवकूफ हैं कि अपनी जानें कुर्बान करे जा रहे हैं, जैसा कि अय्यूब की बीवी ने कहा था कि तू बेवकूफ है, खुदा के नाम पर कुफर पर लानत कर और मर जा, तू क्यों उसके नाम का इनकार नहीं करता। बहुत सारी बीवियां उस वक्त अपने हस्बैंड्स को कहेंगी कि इनकार कर दे, क्या हो गया तू पागल हो गया, बहुत सारे हस्बैंड अपनी बीवियों को कहेंगे कि कर ले इनकार, क्या हो गया बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अपने मां-बाप को कहेंगे कि कर देते हैं इनकार, आओ हम इनके साथ चले जाते हैं, बहुत सारे मां-बाप अपने बच्चों को समझाएंगे कि तुम क्या बेवकूफों की बातें कर रहे हो, आओ इसके पास जो है वो बात ठीक है। लेकिन बाइबल ये बताती है कि जितनों ने यीशु के नाम का वहां पर इनकार किया वो आग की झील में डाले गए, लेकिन जितनों ने वहां पर यीशु के नाम के वजह से अपनी जानें दे दी, अपने सर कटवा लिए, लिखा है कि जिन्होंने ना तो उस हैवान की प्रस्तुति की, ना उस बुत की, ना उस छाप अपने उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली, वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे, जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हो लिए, बाकी मुर्दे वहीं पर मरे पड़े रहे, और हम जिंदा होकर उसके साथ बादशाही करेंगे, हम जलाली बदन में बैठेंगे, हम तख्त पे बैठेंगे, हम कौमों के कबीलों का इंसाफ करेंगे, जैसा खुदावन के कलाम में लिखे कि मैं तुम्हें कौमों पर शहरों पर इख्तियार बख्शूंगा, हम दुनिया को जज करेंगे वहां पर बैठकर, हमें खुदावन अपनी कहानत देगा, खुदा की हैकल तामीर की जाएगी, जैसा ज़करिया 6 बाब में लिखा है कि खुदावन यीशु मसीह अपने जलाल के लिए यरूशलेम में हैकल बनाएंगे और हम वहां पर काम करेंगे खुदावन के साथ खड़े होकर, हम वहां पर कहानत करेंगे खुदावन के साथ खड़े होकर, हम वहां पर खुदावन के नाम को जलाल देंगे, खुदा का कलाम फैलाया जाएगा और हम वहां पर खुदावन के साथ शरीक होंगे, हमें रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, हमें जलाल के तख्त दिए जाएंगे, हमें जलाल के ताज दिए जाएंगे, हमें एक नया नाम दिया जाएगा, जैसा कि उसने कहा कि जो गालिब है उसको मैं एक नया नाम दूंगा, उसको आसमानी मन में से खिलाऊंगा, उसको मैं खुदा की बादशाही में एक सुतून की मानद बना दूंगा, उसको मैं खुदा की बादशाही में हमेशा के लिए कायम कर दूंगा, उसको जलाल का लिबास दूंगा। कितना बड़ा रिवॉर्ड है हमारे लिए। सो हमारे लिए खुदावन ने 2 ऑप्शन रख दिए हैं कि या तो हम जिंदगी को हासिल कर लें या मौत को हासिल कर लें। दुनिया इस वक्त बहुत बड़े दुराहे पर खड़ी है, जैसा कि आप ये देखेंगे दुनिया की हिस्ट्री को जब चेंज किया गया तो यीशु मसीह के साथ चेंज किया जाता है, आपको पता ना, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट, ठीक है, यीशु मसीह से पहले की हिस्ट्री, यीशु मसीह के बाद की हिस्ट्री। इसी तरह अब दुनिया को 9/11 के साथ भी किया जाता है, ठीक है, अब दुनिया एक और जो है वो दुराहे पर आकर खड़ी होगी है, जब मुखालफ मसीह का दुनिया में आना हो जाएगा तब दुनिया तब्दील हो जाएगी, तब लोग आधे इधर चले जाएंगे आधे इधर चले जाएंगे, ठीक है, तब हम सुस्ती का शिकार होंगे तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। लिखे कि तब 2 लोग सोते होंगे, एक ले लिया जाएगा एक छोड़ दिया जाएगा, तब 2 लोग खेत में काम करते होंगे, एक ले लिया जाएगा एक छोड़ दिया जाएगा, 2 चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी एक छोड़ दी जाएगी, अच्छे दाने उठा लिए जाएंगे, कड़वे दाने आग में डाल दिए जाएंगे, ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो हम सच्चाई के साथ खड़े होंगे या फिर हम झूठ के साथ खड़े होंगे। हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो हम नेकी में अंधेरे में खड़े होंगे और अंधेरे में और बदी में खड़े होंगे, या हम रोशनी में और नेकी में खड़े होंगे, या हम यीशु मसीह के नाम की खातर मर मिटेंगे या फिर हम मुखालफ मसीह के छाप लेकर हमेशा की मौत को अपने ऊपर ले लेंगे। बाइबल में लिखा है कि जो अपनी जान उसको बचाएगा वो अपनी जान को खोएगा। उससे डरो जो बदन और रूह दोनों को कत्ल कर सकता है, उससे ना डरो जो सिर्फ बदन को कत्ल कर सकता है। आज अगर हम वो वीडियोस देखें, मैं हैरान होता हूँ कि ऐसे ऐसे दलेर लोग, 9 साल के बच्चे का सर काट दिया, उसको बोला कि तुम जो है वो मसीह का इनकार करो और उसने नहीं किया, उसको बोला कि कलमा पढ़ लो, उसने नहीं पढ़ा, उसको लटा उसकी गर्दन काट दी। 9 साल का बच्चा, मेरे जो कितना खौफजदा हो जाता है एक बच्चा, लेकिन देखे उसका ईमान कितना बड़ा था। और एक गवाही जो है वो खुदा के एक बंदा ने दी रिसेंटली, जो सुन रहा था, मुझे याद नहीं कि किसने मुझे बताई ये बात, कि एक खादम ने एक रोया देखी और रोया में उसने देखा कि एक बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है और उसकी सारी कलीसिया को जो है वो लेकर जाया जा रहा है और मुखालफ मसीह की छाप ऑफर की जा रही है, अपना मार्क ऑफ द बीस्ट वो दे रहा है और वो सबको कह रहा है कि मान लो, कुछ लोगों ने मान लिया, लेकिन कहता है कि उसकी बीवी की गर्दन उसके सामने काटी गई और उसको कहा गया कि मान लो। उसकी बीवी ने कहा नहीं, मैंने जो है वो इनकार नहीं करना मसीह का, और उसकी गर्दन उड़ा दी गई। और कहता है कि जब मैं वहाँ पर लिटाया मुझको, तो कहता है कि मैंने देखा कि एकदम खुदा का फरिश्ता आया और उसने मेरी रूह पहले ही निकाल ली, और जब उसकी गर्दन काटी गई तो उसका बदन जो था वहाँ पर मुर्दा पड़ा हुआ था, क्योंकि उसकी रूह, कहता है मेरी रूह निकल गई और मैं देख रहा हूँ वहाँ पर खड़ा होकर कि किस तरह मेरी गर्दन काटी गई। मेरे अजीजों, जब रोम की हुकूमत ने कलीसिया पर बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आए थे, तो वहां पर फौजियों ने जो है गवाही दी, रोम के सिपाही जो थे मसीहियों के हाथ जब काटते थे, पांव काटते थे, तो लिखा है कि वो आगे से मुस्कुराते थे और उन्होंने पूछा कि तुम क्यों कर मुस्कुराए, क्या तुम्हें तकलीफ या दर्द नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि खुदा का फरिश्ता खड़ा है और जब तूने मेरा हाथ काटा उसने आकर उस पर टच किया और मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। मेरे अजीजों, खुदा का रूह हमें बचाएगा। वहां पर खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है कि उस वक्त तुम ये ना सोचना कि तुम क्या बोलोगे, क्या कहोगे या क्या करोगे, उसी घड़ी तुम्हें सिखा दिया जाएगा। वो वक्त ऐसा होगा कि हम डरे ना, ये वक्त जो है मुसीबत का वक्त है, लेकिन मेरे अजीजों ये घड़ी दो घड़ी की तकलीफ होगी, लेकिन आज हम, मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले मैं आपके सामने निजात का मैसेज रखना चाहता हूं कि हम निजात पाए पहले, हम खुदावन को अपनी जिंदगी तो दें, उसके बाद जब ये मुसीबत का वक्त दुनिया पर आने वाला है तो हम फिर तैयार रहें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इस मुसीबत में हमारी हिफाजत करेगा। और लिखा है कि चूंकि तूने मेरे सबर के कलाम पर अमल किया है, मैं तेरी हिफाजत करूंगा। लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि जो तलवार से कत्ल होगा वो जरूर ही होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उनका शुमार भी पूरा होगा। तो हो सकता है कि हम वो लोग हों जो हिफाजत किए जाएं, हो सकता है हम वो लोग हों जिनको ये मौका दिया जाए कि हम अपनी जानें खुदा के लिए कुर्बान कर दें, जान देने तक वफादार रहें। लेकिन मेरे जीजो, वक्त बहुत नज़दीक आ गया, बाइबल ये साफ साफ बता रही है और ये जो दुनिया के हालात हैं उस तरफ लेकर जा रहे हैं। कीप एन आई ऑन सीरिया, कीप एन आई ऑन डमास्कस, कीप एन आई ऑन बेबीलोन, कीप एन आई ऑन इराक, सऊदी अरब के ऊपर अपनी आंखें रखें। बहुत जल्द आप देखेंगे कि सऊदी अरब जो है वो इनके कब्जे में चला जाएगा, मक्का को ये लोग तबाह कर देंगे। बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये जो टर्की है ये इनका लीडर बनेगा और ये सारा कुछ जो है इनके इख्तियार में जाएगा। लीबिया को आप डैनियल, अगर उसके डैनियल के चैप्टर 11 में जाकर देखें किस तरह लीबिया और इजिप्ट इनके हाथ में चले जाएंगे, किस तरह ट्यूनिजिया इनके हाथ में चला जाएगा, सूडान इनके हाथ में चला जाएगा, और ये सारा जो है वो इतना बड़ा ब्लॉक बन जाएगा कि इनसे जंग करना जो है पॉसिबल नहीं रहेगा। बाइबल में क्या कहती है, बाइबल की ये हैवान इतना मजबूत हो जाएगा कि लोग कहेंगे कि इनके खिलाफ कौन जंग कर सकता है। अभी तो ये दो कंट्रीज के ऊपर है और अटैक कर रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं ओबामा वगैरह और ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज के, इनको हराना जो है वो कई साल लग जाएंगे। आप खुद सोचे कि इतने कंट्रीज जो है इसमें शामिल हो गए तो फिर कैसे इनको डिफीट किया जाएगा, और दुनिया का सब ऑयल जो है वो इस रीजन में है। जब ऑयल इनके कब्जे में चला जाएगा तो यूरोप अपने पैरों पर आ जाएगा, घुटनों पर आ जाएगा। जब ऑयल इनके कब्जे में चला जाएगा तो चाइना अपने घुटनों पर आ जाएगा। जब ऑयल इनके कब्जे में चला जाएगा तब इंडिया अपने घुटनों पर आ जाएगा। अमेरिका के पास फिर भी रिजर्व्स हैं। और बाइबल ये बताती है कि अमेरिका एंड यूके विल बी दोस कंट्रीज जिनको आखिरी जमाना में खुदा खड़ा करेगा मुखालफ मसीह के खिलाफ। हमने दुआ करनी है अपने कंट्रीज के लिए, हमने इन कंट्रीज में मजबूत बनाना है मसीहत को और मसीही नाम को जो है ऊंचा करना है। और आप ये देखें कि इस वक्त अमेरिका में और इंग्लैंड में कितना ज्यादा जो है वो इस्लाम और ये चीजें जो है वो फैल रही हैं। हमारे कैथेड्रल्स में जुम्मे की प्रेयर्स कराई जा रही हैं, और जो क्रिश्चियन वहां पर उन्होंने वहां पर जो है वो उसके खिलाफ आवाज उठाई, उनको पादरियों ने बाहर निकाल दिया। ठीक है, इंग्लैंड में भी यही हो रहा है। इंग्लैंड में शरिया पेट्रोल्स शुरू हो गए हैं, जहां पर जो है वो फनेटिक मुस्लिम्स जो हैं, उन्होंने क्या किया है कि मुसलमानों जो मुस्लिम मॉडरेट मुस्लिम है, जो जीन्स पहनते हैं, जो पेंटे पहनती हैं, जो लड़कियां बुरके नहीं पहनती, उनको मारना शुरू किया, उनको वहां पर बीट अप करते हैं। जो क्रिश्चियन या गोरा कोई जा रहा है उसको वो कहते हैं आप इधर नहीं आ सकते, ये मुस्लिम एरिया। हमें ये देखना है कि इस्लाम से जो फनेटिक इस्लाम है, इससे सिर्फ मसीही नहीं सफर कर रहे, मुस्लिम्स भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दुनिया में ये जो बहुत बड़ी मुसीबत जो है वो हमारे सरों पर आ गई है, और हमें अपने आप को तैयार करना है। हम अपनी जिंदगी खुदावंद को दे और खुदावंद के कलाम की जो बातें लिखी हुई हैं वो पूरी हो रही हैं। बहुत जल्द हम उस मुसीबत में पड़ने वाले हैं। ये रोटी पानी पर कैसे वो पाबंदी लगा देंगे, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी इनके हाथ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है हमारी आंखों के सामने होने वाला है। और बाइबल ये बताती है कि अगर तू साबित कदम रहे, क्योंकि तूने मेरे सबर के कलाम पर अमल किया है, मैं तेरी हिफाजत करूंगा। एलिया और सारपत की बेवा खुदा के साथ चलने वाले रास्तबाज लोग थे, उनकी हिफाजत हुई। अगर हम ये समझते हैं कि सिर्फ चर्च आ जाने से, संडे को या पादरी साहब को थोड़ा सा चंदा दे देने से, या फिर हमें दो गीत गाने से खुदा हमारी हिफाजत करेगा, तो हम गलतफहमी का शिकार हैं। Let's start walking with the Lord seriously. आइए हम अपने आप के साथ, अपने घराने के साथ, अपने खुदा के साथ, इस कलाम के साथ सीरियस हो जाएं। आइए हम तैयारी शुरू कर दें, प्रॉपर तैयारी शुरू कर दें, दुआ और रोजे में और खुदा के घर में शामिल होने में, खुदा के खादम का हाथ बटाने में और तैयारी में पड़ जाएं। आइए हम खिदमत में खड़े हो जाएं और जो खिदमत कर रहे हैं उनके साथ खड़े हो जाएं। आइए अपनी जिंदगी खुदा को दे दें। हमने तौबा बपतिस्मा नहीं किया तो हम वो करना शुरू कर दें। अपने जिंदगी को खुदा के कलाम की ऊपर ले आए, रोज दुआ करना शुरू कर दें, रोज बाइबल पढ़नी शुरू कर दें। जब हम बाकी चीजें कर रहे हैं दुनिया की, जब हम जॉब्स करते हैं, जब हम पार्टियां करते हैं, जब हम बाकी चीजें कर ही जा रहे हैं, तो आइए हम सबसे पहला दर्जा खुदा को देना शुरू कर दें और तैयार होना शुरू कर दें। ऐसा ना हो कि वो दिन चोर की तरह हम पर आ पड़े, जैसा खुदा का कलाम कहता है। लेकिन ईमानदारों के लिए कहता है कि वो दिन चोर की तरह तुम पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो पता होना चाहिए वक्तों और मैदों का। खुदा मद आपको बड़ी बरकत दे। God bless you.